जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सद ग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ, ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग।
ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, हृदय कल्पतरु है, ऐसा वृक्ष जो राग द्वेष आदि सर्पों से रहित है, उसे कौन पदार्थ है जो प्राप्त न हो। शुद्ध हृदय से सब कुछ प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, जो बुद्धिमान है और शास्त्र का ज्ञाता भी है परंतु राग द्वेष संयुक्त है, वह सियार की तरह नीच है, उसको धिक्कार है। जिन पदार्थों को पाने के लिए लोग यत्न करते हैं वे आते और जाते हैं। धन को इकट्ठा कोई करता है और ले कोई जाता है, तब राग द्वेष किसका करिए। जो कुछ प्रारब्ध है सो अवश्य होता है, धन का व्यर्थ यत्न क्यों करिए। बांधव और वस्त्र आते हैं और फिर जाते भी हैं। जैसे समुद्र में जल तंतुओं का आश्रय बुद्धिमान नहीं लेते, वैसे ही जगत के पदार्थों का आश्रय ज्ञानवान नहीं लेते। भाव अभाव रूप परमेश्वर की माया है। संसार की रचना स्वप्न की तरह है, उसमें जो आसक्त होते हैं उनको वह सर्पिणी की तरह डसता है। धन बांधव और जगत वास्तव में मिथ्या ही है, अज्ञान से सत्य भासित होते हैं। हे रामचंद्र जी, जो आदि में न हो और अंत में भी न रहे पर मध्य में भासित हो, उसको भी असत्य जानिए। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 145। मंकी बोले, हे भगवन, जब संतजनों के उपदेश से आत्मज्ञान रूपी सूर्य प्रकट होता है तब अहंकार रूपी वैताल वहां नहीं विचरता। संतजनों का संग और सच्छास्त्रों को देखना चांदनी रात्रि के समान है। उनसे जब स्वरूप का साक्षात्कार हो तब दिन हुआ जाने। जब तक संतजनों का संग नहीं करता और सच्छास्त्र को नहीं देखता तब तक अंधेरी रात्रि है। हे भगवन, जो सच्छास्त्रों को भी सुने और फिर विषयों की ओर भी गिरे, उससे बड़ा अभागी जानी है, और मैं वही हूं। परंतु अब मैं तुम्हारी शरण आया हूं। मेरे हृदय रूपी आकाश में जो अज्ञान रूपी कुहरा है वह तुम्हारे वचन रूपी शरतकाल से नष्ट हो जाएगा और हृदय आकाश निर्मल होगा। हे भगवन, मैंने त्रिदंड साधे हैं, अर्थात दीर्घ काल तक मन शरीर और वाणी से तीन तप किए हैं, परंतु आत्म प्रकाश नहीं हुआ। अब तुम्हारे शरणागत होकर तरूंगा, इसलिए कृपा करके उपदेश करो जिससे मेरे हृदय का तम दूर हो जावे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे तात, संवेदन भावना वासना और कलना ये अनर्थ के कारण है। जब इनका अभाव हो तब कल्याण हो। शुद्ध चिन्मात्र पद प्रत्यक्ष चैतन्य अपने स्वरूप में स्थित है। जो अहंकार का उत्थान है वही संवेदन है। भाव यह है कि पहले आप कुछ बना, फिर चेता और अपना रूप चित्त में स्मरण हुआ, तब भ्रम मिट जाता है। और यदि जो कुछ बना उसकी भावना होती है कि मैं यह हूं, तो इससे संसार दृढ़ होता है। फिर वैसे ही वासना दृढ़ होती है और अपने शरीर के अनुसार नाना प्रकार की कलना होती है। फिर संसार के संकल्प विकल्प उठते हैं। हे ब्राह्मण, ये अनर्थ के कारण है। जब इनका अभाव हो तब कल्याण हो। जितने शब्द और अर्थ है उनका अधिष्ठान प्रत्येक चैतन्य है। सब शब्द उसी के आश्रित है और सब वही है। जब तू ऐसे जानेगा तब वासना का क्षय हो जाएगा। जब अहम संवेदन फुरता है तब आके संसार भासित होता है। जैसे जब वसंत ऋतु आती है तब बेले प्रफुल्लित होती है, वैसे ही जब संवेदन फुरता है तब आगे संसार सिद्ध होता है। और जब संसार हुआ तब नाना प्रकार की वासना फुरती है और संसार नहीं मिटता। हे अंग, संसार जन्म मरण का ही नाम है। जब यह संसरण मिटेगा तब आत्मपद ही शेष रहेगा। वह तेरा अपना रूप है। ऐसे इस वासना को त्याग कर अपने आप में स्थित हो, सब तेरा ही रूप है। जब तक वासना फुरती है तब तक संसार दृढ़ रहता है। जैसे वृक्ष को जल दीजिए तो बढ़ता जाता है, वैसे ही वासना रूपी जल देने से संसार रूपी वृक्ष बढ़ता जाता है। इसे वासना का नाश करो कि यह संवेदन न उठे। जब वृक्ष जल से रहित होता है तब आप ही सूख जाता है। हे पुत्र, आत्मा में जगत नहीं हुआ, केवल परमार्थ सत्ता है। जैसे रस्सी में सर्प, कुछ वस्तु नहीं, रस्सी के अज्ञान से ही सर्प दिखता है, वैसे ही आत्मा के अज्ञान से संसार भासित होता है। जब तू आत्मपद को जानेगा तब परमार्थ सत्ता ही भासित होगी। जैसे बालक अपनी परछाई में भूत की कल्पना कर भय पाता है और जब विचार कर देखता है तब भूत कोई नहीं, सब भय दूर हो जाता है, वैसे ही आत्मा के अज्ञान से संसार के राग द्वेष जीव को जलाते हैं। ज्ञानवान को वासना संयुक्त संसार का अभाव हो जाता है और केवल अद्वैत आत्मसत्ता ही भासित होती है। जैसे स्वप्न से जागकर स्वप्न के प्रपंच का वासना संयुक्त अभाव हो जाता है, वैसे ही जब आत्मा का साक्षात्कार होता है तब वासना संयुक्त संसार का अभाव हो जाता है, क्योंकि वह है ही नहीं। जैसे घट आदिक में मृत्तिका से भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही सब प्रपंच चिन्मात्र स्वरूप है, उससे भिन्न नहीं। जितने शब्द अर्थ है सब आत्मा ही के हैं। हे मित्र, जो कुछ आत्मा से इतर भासित होता है उसको ब्रह्मात्र जानो। जैसे आकाश में नीलिमा जो दिखती है वह ब्रह्मात्र है, वैसे ही विश्व असम्यक दृष्टि से दिखता है, सम्यक दृष्टि से सब प्रपंच आत्मस्वरूप ही है। दृष्टा, दर्शन, दृश्य की त्रिपुटी भी बोध स्वरूप है। बोध ही त्रिपुटी रूप होकर स्थित है। जैसे स्वप्न में एक ही अनुभव त्रिपुटी रूप होकर भासित होता है, वैसे ही यह जागृत की त्रिपुटी भी आत्मस्वरूप है। हे अंग, जितने स्थावर जंगम पदार्थ हैं, सब आत्मस्वरूप है। जो परमात्मा स्वरूप न हो तो भासित न हो। दृष्टा रूप से जो अनुभव करता है वह एक अद्वैत रूप है। उसी स्वरूप के प्रमाद से भिन्न भिन्न त्रिपुटी भासित होती है तो भी कुछ उससे भिन्न नहीं है। जैसे स्वप्न में त्रिपुटी अपने अनुभव से भासित होती है, जो अनुभव न हो तो क्यों भासित हो, वैसे ही यह त्रिपुटी भी अनुभव रूप आत्मा से भासित होती है। इसे सब परमात्मा स्वरूप है, कुछ भिन्न नहीं। और जब भिन्न नहीं तो है ही नहीं, क्योंकि सबकी एकता परमार्थ स्वरूप में होती है। हे ऋषिश्वर, सजातीय वस्तु मिल जाती है, जैसे जल में जल की बूंद डालिए तो मिल जाती है, क्योंकि एक रूप है। वैसे ही बोध से सब पदार्थों की एकता भासित होती है, क्योंकि द्वैत सत्ता कोई नहीं है। जैसे स्पंदन और निस्पंदन दोनों पवन ही है और जल और तरंग अभेद रूप है, वैसे ही विश्व परमार्थ स्वरूप है। ऐसे ऐसे निश्चय करो कि सब ब्रह्म स्वरूप है, अथवा अपने को उठा दो कि मैं नहीं। जब तू न होगा तब विश्व कहां से होगा। हे मंकी ऋषि, प्रथम जो अहम होता है तो पीछे ममत्व भी होता है, इसलिए जो अहम ही न रहेगा तो ममत्व कहां रहेगा। इस अहम का होना ही बंधन है और इसके अभाव का नाम मुक्ति है। हे मित्र, इस युक्ति में क्या यत्न करना है, यह तो अपने अधीन है कि सोचो मैं नहीं हूं। जब अहंकार को निवृत्त किया तब शेष वही रहेगा जो सबका परमार्थ स्वरूप है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। हे मुनीश्वर, जब अहंकार उत्पन्न होता है तब नाना प्रकार की वासना होती है और उन वासनाओं के अनुसार जीव अनेक जन्म पाता है जो वर्णन नहीं किए जा सकते। जैसे पवन से तृण उड़ते और भटकते फिरते हैं, वैसे ही वासना से जीव नाना योनियों में भटकते फिरते हैं। जब पर्वत से कंकड़ गिरता है तब चोटे खाता नीचे को चला जाता है, वैसे ही स्वरूप के प्रमाद से जीव जन्म जन्मांतर चले आते हैं और वासनानुसार घटी यंत्र किनाई कभी ऊपर और कभी नीचे जाते हैं। जैसे हाथ से ताड़न किया गेंद कभी ऊपर और कभी नीचे को जाता है। हे अंग, हे संसार का बीज वासना ही है। जब वासना निवृत्त हो तब सबकी एकता हो जाती है। जैसे दूध और जल मिलता है तो उसका संयोग होता है, वैसे ही आत्मा और विश्व का संयोग नहीं। आत्मा केवल अद्वैत और सबका अपना रूप है। जैसे मृत्तिका ही घट आदिक रूप भासित होती है, वैसे ही आत्मसत्ता ही जगत रूप होकर भासित होती है। इससे आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। हे साधो, आत्मा और दृश्य का, काष्ठ और लाख का जैसा अथवा घट और आकाश का जैसा संयोग नहीं है, क्योंकि आत्मा अद्वैत है और सब दृश्य बोध मात्र है। हे साधो, जो जड़ है वह चैतन्य नहीं होता और चैतन्य जड़ नहीं होता। इससे न कोई जड़ है न चैतन्य। चैतन्य आत्मा ही भावना से जड़ दृश्य होकर भासित होता है और उसके बोध से एक अद्वैत रूप हो जाता है तो जानता है कि सब वही है, भिन्न कुछ नहीं। हे मित्र, अज्ञान से नाना प्रकार का विश्व भासित होता है। जैसे मेघ की वर्षा से नाना प्रकार के बीज उगाते हैं, वैसे ही अहम रूपी बीज से संसार रूपी वृक्ष वासना द्वारा उगता है। जब अहंकार रूपी बीज नष्ट हो तब संसार रूपी वृक्ष नष्ट हो जाएगा। हे अंग, जैसे वानर चपलता करता है, वैसे ही आत्म तत्व से विमुख अहंकार रूपी वानर वासना से चपलता करता है। जैसे गेंद हाथ के प्रहार से नीचे और ऊपर उछलता है, वैसे ही जीव वासना से जन्मांतरों में भटकता फिरता है, कभी स्वर्ग कभी पाताल और कभी भूमि लोक में आता है। स्थिर कभी नहीं होता। इसे वासना को त्याग कर आत्मपद में स्थित हो रहो। हे तात, यह संसार रात्रि की मंजिल है, देखते देखते नष्ट हो जाती है। इसको देखकर इसमें प्रीति करना और इसे सत्य जानना ही अनर्थ है। इसे संसार को त्याग कर आत्मपद में स्थित हो रहो। चित्त की वृत्ति जो संसरण करती है, इसी का नाम संसार है। वशिष्ठ जी बोले, हे तात, यह संसार का मार्ग गहन है और इससे जीव भटकते हैं। यह चैतन्य वृत्ति जो संसरण करती है, यही संसार है। जब यह संसरण मिटे तब स्वच्छ अपना स्वरूप देख पड़े। चेतना वृत्ति जो बहिर्मुख उठती है, इसी का नाम बंधन है और कोई बंधन नहीं। हे साधो, यह जगत वासना से बंधा है। जैसे वसंत ऋतु में रस फैलता है, वैसे ही वासना में जगत फैलता है। बड़ा आश्चर्य है कि मिथ्या वासना से जीव भटकते फिरते हैं, दुख भोगते हैं और बारंबार जन्म लेते और मरते हैं। बड़ा आश्चर्य है कि विषय रूप वासना के वश हुए जीव अविद्यमान जगत को भ्रम से सत्य जानते हैं। हे साधो, जो इस वासना रूप संसार से तर गए हैं, वे धन्य हैं। वे प्रत्यक्ष चंद्रमा की तरह शांत हैं। जैसे चंद्रमा अमृत रूप शीतल और प्रकाशमान है और सबको प्रसन्न करता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी। इससे तू धन्य है जो तुझे आत्मपद पाने की इच्छा हुई है। हे अंग, यह संसार तृष्णा से चलता है। जिनकी चेष्टा तृष्णा संयुक्त है, उनको तू बिलाव जान। जैसे बिलाव तृष्णा से चूहे को पकड़ता है, वैसे ही वे तृष्णा से युक्त चेष्टा करते हैं। मनुष्य शरीर में यही विशेषता है कि वह किसी प्रकार आत्मपद को प्राप्त करे। जो नरदेह पाकर भी आत्मपद पाने की इच्छा न करे तो वह पशु समान है। हे मित्र, मूढ़ जीव ऐसी चेष्टा करते हैं कि प्राणों के अंत तक भी तृष्णा में फंसे रहते हैं। हे अंग, ब्रह्मलोक से काष्ठ तक जितने इंद्रियों के विषय है उनके भोगने से शांति नहीं होती, क्योंकि वे आपात रमणीय है, इनमें सुख कभी नहीं मिलता। जो ज्ञानवान पुरुष है उनकी शांति ऐसी है जैसे चंद्रमा में और वे सूर्य किनारे प्रकाशमान होते हैं, विषयों की तृष्णा कभी नहीं करते हैं। जैसे कोई पुरुष अमृत पान करके तृप्त हुआ हो तो वह खली खाने की इच्छा नहीं करता, वैसे ही जिस पुरुष को आत्मानंद प्राप्त हो जाता है वह विषयों के भोगने की इच्छा नहीं करता। इससे इसी वासना का त्याग करो। वासना का बीज अहंकार है, उसको यह सोचकर निवृत्त करो कि मैं नहीं हूं, क्योंकि मेरा होना ही अनर्थ है। हे साधो, शुद्ध चिन्मात्र निरअहंकार पद में जो तू अपने को परिचिन्न जानता है कि मैं ब्राह्मण हूं, अथवा किसी प्रकृति से मिलकर अपने को मानता है कि मैं यह हूं, यही अनर्थ है। हे ऋषि, नेत्रों को खोलने से संसार उत्पन्न होता है और नेत्रों को मुनने से नष्ट हो जाता है। सो नेत्र अहंकार का उत्पन्न होना है, इसी से आगे विश्व सिद्ध होता है। इससे तेरा होना ही अनर्थ है। हे अंग, जैसे रस्सी में सर्प भ्रम से उदय होता है, वैसे ही आत्मा में अहंकार का उदय हुआ है। इसी के अभाव से शांति होती है। जब अहंकार होता है तब आगे स्त्री कुटुंब और धन होते हैं, वे ही बंधन हैं। इनके चमत्कार ऐसे हैं जैसे बिजली का प्रकाश क्षण में उदय होकर नष्ट हो जाता है, इससे इनमें न बंधना चाहिए। हे अंग, जब तू कुछ बना तब सब आपदा तुझे प्राप्त होंगी। और यदि तू अपना अभाव जानेगा तो पीछे परम शांत रूप आत्मपद ही शेष रहेगा, जिसकी अपेक्षा चंद्रमा भी अग्नि सा जान पड़ता है। वह आत्मपद परम शून्य सब पदार्थों की सत्ता और आकाश रूप है। हे मित्र, मेरे इन वचनों को हृदय में धारण कर जिसमें तेरा मोह नष्ट हो जाए। यह विश्व हुआ नहीं। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा दिखता है पर है नहीं, वैसे ही विश्व है नहीं, आत्मा के प्रमाद से भासित होता है। हे ऋषि, तू उसी को जान जिसके अज्ञान से विश्व भासित होता है और जिसके ज्ञान से लय हो जाता है। हे मंकी, जैसे आकाश शून्य मात्र है, पवन स्पंद मात्र है और जल तरंग मात्र है, वैसे ही जगत संवित मात्र है। उस संवित आकाश से जो भिन्न भासित होता है उसे ब्रह्मात्र जानो। जैसे असम्यक दृष्टि से जल पहाड़ रूप भासित होता है, वैसे ही असम्यक दृष्टि से जगत भासित होता है और सम्यक अवलोकन से परमार्थ सत्ता ही भासित होती है। जिसके अज्ञान से विश्व भासित होता है उसी को ज्ञानवान लोग ब्रह्म कहते हैं। उस ब्रह्म में अहंकार ही व्यवधान है। वह पदार्थ ज्ञानवान को नष्ट हो जाते हैं, इसे वह सबके अधिष्ठान एवं परमार्थ स्वरूप को देखता है, उसी में तू भी रहे। जैसे आकाश अनेक घटों के संयोग से भिन्न भिन्न भासित होता है और घटों को फोड़ डालिए तो सब एक ही हो जाता है, वैसे ही अहंकार रूपी घट फोड़िए तो सब पदार्थ एक हो जाते हैं। हे अंग, सबकी परमार्थ सत्ता एक ब्रह्म पद है, वह अजन्मा अच्युत आनंद शांत रूप निर्विकल्प अद्वैत सबका अधिष्ठान है। उस शिला सदृश आत्मसत्ता से भिन्न कुछ न सूरण हो, इसलिए निर्बोध बोध हो जाओ। हे मंकी ऋषि, ये दुख देने वाले पदार्थ और ऐसे शब्द अर्थ आकाश के फूल है, इससे शोक मत कर। कारण सब पर परमार्थ सत्ता ही है। जैसे पुरुष निराकार है पर उसकी भावना से अंगों का संयोग होता है, वैसे ही विश्व भी इसकी भावना से होता है। जैसे संसार की भावना दृढ़ होती है वैसा ही रूप आगे देख पड़ता है। जो विश्व उपादान से नहीं हुआ तो आरंभ परिणाम से भी कुछ नहीं बना। हे मित्र, शुद्ध परमात्मा को पाना साध्य है, क्योंकि विश्व निरुपादन केवल शब्द मात्र है। आत्मा अद्वैत है, अतः इसका हेतु नहीं है, वह अचिंत्य है। इससे विश्व निरुपादन स्वप्नवत है। जैसे स्वप्न की सृष्टि निरुपादन होती है, वैसे ही जागृत सृष्टि भी है। जैसे मृत्तिका से घट कार्य बनता है, ऐसे ही आत्मा विश्व का उपादान नहीं है, क्योंकि मृत्तिका परिणाम से घटाकार होती है, परंतु आत्मा निर्विकार अच्युत है। जैसे भीत बिना चित्र हो सो है नहीं, इससे यह विश्व आकाश में चित्र है। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार का विश्व आधार भीत बिना चित्र होते हैं, वैसे यह विश्व भी आकाश में चित्र सा है। इससे कहा है, आत्मा अकर्ता है और विश्व जो दिखता है सो निरुपादान है। तब इसका शोक और हर्ष क्यों करें? यह सब प्रपंच आत्मस्वरूप है, प्रमाद के कारण यह नहीं जाना जाता। हे साधो, संवेदन से जब अहंकार फुरता है तब विश्व भासित होता है। जैसे स्वप्न में जो कुछ बनता है वह अपने स्वरूप से भिन्न देख पड़ता है और उसी में राग द्वेष होता है, पर जागने पर और कुछ नहीं, सब कल्पना ही थी। वैसे ही जब संवेदन उठ गया तब सब विश्व आप अपना रूप हो जाता है। अहंकार होना ही विश्व है। जब अहंकार नष्ट हुआ तब ये सब शब्द अर्थ कि मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, यह नरक है, यह स्वर्ग है, परमार्थ सत्ता ही में फुरते हैं। सबका अधिष्ठान आत्मा है, इससे सब आत्मस्वरूप है। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहनाववतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहे। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।